हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 25। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासनां व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममरं प्रेम तुमर्थो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्ताकरः न परः। करारिविन्दे न पदारिविन्दं मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वेऽपि वस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द धामो दशमाधवेशे। प्रजीवसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचोरम्। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोरा गगन्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। मुखं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति किरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दीनधारणम्। ग्रंथ आज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। जैसे कि हमने श्लोक नंबर गजेंद्र की प्रार्थना सुनी, गजेंद्र कह रहे हैं कि वह भगवान जो सबसे परम है, जो दिव्य है, समस्त देवताओं के, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी जो आराध्य है और जो अनादिकाल से है और अनादिकाल से समस्त जीव उन्हीं से प्रकट होते हैं, उन्हीं के अंदर विलीन हो जाते हैं, वही भगवान मेरी सुरक्षा के लिए प्रकट हो, वही भगवान आए और मेरी रक्षा करें। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या वो ग्राह से ग्रस्त है इसीलिए अपने शरीर की रक्षा चाहते हैं। तब गजेंद्र कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे इस शरीर से कोई आकर्षण नहीं है, मुझे यह शरीर अगर ग्राह से विमुक्त भी हो जाए तो भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपना वास्तविक स्वरूप चाहिए। अत्यंत ही सुंदर शब्दों में गजेंद्र भगवान से स्तुति कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। गजेंद्र कहते हैं जी जी विशेना हमिहामुया किम अंतर्बहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम्। जी जी विशेना हमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्च वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम्। जी जी विशेना हमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्च हृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम्। शब्दात् जी जी विषे, जी जी विषे का मतलब होता है कि दीर्घ काल तक इच्छा, ना मतलब नहीं है, हम यानी मैं, यह मतलब इस शरीर में, ये जो भौतिक जीवन अभी जो प्रेजेंट मेरा जीवन है, इस शरीर में दीर्घ काल तक जीने की इच्छा नहीं है। और अमुया का क्या मतलब है, अमुया मतलब या अगले, यानी अगले जीवन में, मतलब ये जो अभी प्रेजेंट मेरी कष्ट वाली स्थिति है जिसमें मुझे ग्राह ने जकड़ लिया है, मैं पीड़ित हूँ, दुखित हूँ, लेकिन यदि ये ग्राह मुझे छोड़ भी दे, इस संकट से मैं बच भी जाऊं, अमुया मतलब इस संकट से बच जाने पर भी, जी जी विशेना, फिर भी मैं जीना नहीं चाहता। समझ में आया, जी जी विशेना हम इहा मुया किम, कि इस शरीर में तो क्या, अगर ये शरीर मेरी पीड़ा से छूट भी जाए, यदि इस शरीर का संकट समाप्त भी हो जाए, तो भी अब मैं इस हाथी के शरीर को, गज के शरीर को लेकर दीर्घ काल तक नहीं जीना चाहता। तो पूछा जाए क्यों नहीं जीना चाहते इस शरीर में, यदि तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, कष्ट समाप्त हो जाएगा, फिर क्यों नहीं। तब बहुत ही सुंदर उत्तर देते, कहते अंतर्बहिश्चा वृतये भयोन्या, ये कच का शरीर तो अंतर बहिश्चावृत भीतर और बाहर दोनों तरह से आवृत है, अविद्या से व्याप्त है। तो अंतर से तो सभी शरीर अविद्या से व्याप्त हैं, तभी तो इस भौतिक जगत में है। यदि आंतरिक ज्ञान उत्पन्न हो जाए, आंतरिक ये जो अविद्या का पर्दा है वो हट जाए, फिर तो जीव वास्तविक स्थिति को पार कर भगवान के पास चला जाएगा। भगवान से प्रेम जो कि सुषुप्त हो गया है वो ज्ञान के प्राप्त होने से, जब अंतर आत्मा का ज्ञान उदय हो जाता है तो फिर जीव भगवान के साथ अपने वास्तविक स्वरूप में प्रेम का संबंध निर्माण करता है। भौतिक वस्तु और व्यक्तियों से कोई आकर्षण नहीं रहता, लेकिन हम सबका अंतःकरण जो है वो अविद्या से व्याप्त है, इसीलिए हम इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और वस्तुओं की ओर आकर्षित हैं। तो अंतर से तो सभी का जो अंतःकरण है वो अविद्या से व्याप्त है, लेकिन बाहर से कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो बाहर से अविद्या से व्याप्त नहीं दिखते हैं। अविद्या से मतलब जैसे मनुष्य हैं, देवता हैं, तो बाहर से वो अपने भौतिक शरीर से वो दिख रहा होता है ऐसे कि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है और बहुत बहुत अपने शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार के भोग प्राप्त करते हैं, मतलब बहुत ही लक्जरियस लाइफ अपनी गुजार सकते हैं। बाहर से दिखता है कि वो अविद्या से व्याप्त नहीं, लेकिन हाथी का शरीर जो होता है आपने देखा होगा साइज में बहुत बड़ा है, परंतु बुद्धि उसमें इतनी नहीं है, क्योंकि देखो इतना बड़ा महा ताकतवर हाथी होता है और उसको कंट्रोल कौन करता है, एक छोटा सा मतलब साधारण सा मनुष्य महाबच्चो होता है, एकदम साधारण होता है। अगर हाथी थोड़ा भी बुद्धि यूज करे तो ऐसे सूंड से उसको पकड़ के गोल गोल घुमा के पटक देना, फौरन से मर जाए। परंतु वो महाबच्चो हाथी को कंट्रोल करता है, वो उसके ऊपर बैठा हुआ होता है और उसके इशारे पर हाथी काम कर रहा होता है। तो मतलब ये कैसा शरीर है, वो कहता है अंतर बहिश्चावृत, ये अंतर और बाहर दोनों से, अंदर से तो मुझे कोई भगवान की स्मृति नहीं, अविद्या ही अविद्या है, तभी तो भौतिक चुंगल में फंसा हुआ हूँ, और बाहर से भी। और देखा जाए तो हाथी में मतलब काम वासना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको पता है जब हाथी को पकड़ा जाता है ना, फिर क्या किया जाता है, एक खड्डा खोदा जाता है बहुत बड़ा, ऊपर से घास रखी जाती है और उसके ऊपर लकड़ी का या फॉर्मिका का कुछ इस तरह से हाथनी का एक स्टेचू पुतला बना के उसके ऊपर रखा जाता है, एकदम ओरिजिनल लगता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, ओरिजिनल जो हथनी होती है ना वो उस गड्ढे के उस तरफ ऐसे चिंगारती है, जैसे चिंगारती है ना हथनी इस तरह से, और जैसे ही हाथी उसको देखता है तो उसके हृदय में काम वासना उत्पन्न हो जाती है, वो काम के अंतर्गत आगे बढ़ता है। और वो हथनी तो चिंगार के चढ़ी गई, लेकिन जो हथनी उस खड्डे के ऊपर खड़ी की है ना, उसी को ओरिजिनल समझने लगता है और जाके उसको स्पर्श करना चाहता है, दौड़ के जाता है और इस तरह खड्डे में गिर जाता है। और फिर क्योंकि अब जंगल में पड़ा हुआ हाथी वो इतना ज्यादा पावर वाला होता है कि उसको उसी टाइम पर कैद नहीं किया जा सकता, फिर क्या करते हैं, बहुत सारे 4-5 दिन तक उसको कुछ खाना नहीं देते हैं, उसको खाना पानी कुछ भी नहीं दिया जाता है, फिर वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है। फिर जब ऐसे करते करते वो दुखी हो जाता है, बुद्धि तो वैसे थोड़ी होती है, फिर एक दूसरा मतलब साइड से रास्ता निकाला जाता है और उसको लेके जाया करता है। इस तरह से हाथी को कंट्रोल किया जाता है। बहुत दुखी होता है अगर सोचे, अगर अपनी अंतर की वासना को और अपनी बुद्धि को थोड़ा सा जागृत कर ले तो हाथी को कोई पकड़ भी नहीं सकता। परंतु ये गजेंद्र बता रहे हैं कि हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम अंतर और बाहर दोनों तरह से आवृत हैं। एक हाथी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अंतर बहिश्चावृत ये भयोनिया, एबा योनि, एबा योनि, एबा कहते हैं हाथी की और योनि मतलब योनि में, हाथी की योनि में जीव अंतर और बाहर दोनों तरह से आवृत होता है। तो मुझे इस हाथी की योनि में नहीं जीना है, मैं इस शरीर को लेकर दीर्घकाल तक नहीं जीना चाहता हूँ। तो पूछा जाए, अच्छा बताइए तो आप क्या चाहते हैं? तो बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं, इच्छामि काले ननयस्य विप्लवा। अच्छा यहाँ पर एक बात और भी कही जाती है कि चलो ठीक है, तुम्हें अभी लगता है कि तुम्हारा अंतःकरण और बाहिश जो भीतर है और बाहर है वो आवृत है अज्ञान से, तो ये अज्ञान तो समय के साथ नष्ट हो ही जाएगा, है ना? कि धीरे धीरे समय के साथ, जैसे अगर भगवान की कृपा होगी तो नष्ट नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे कुछ समय बीत जाएगा, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होगा तो खुद ब खुद है ना ये अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तब वो कहते हैं नहीं नहीं, ये इच्छा में कालीन नयस विप्लवा, ये मेरी इच्छा है कालीन, काल के प्रभाव से न यस्य विप्लव, काल के प्रभाव से ये जो आवरण है वो खत्म नहीं होगा, केवल भगवान की कृपा से ही नष्ट हो सकता है। मतलब मुझे अधिक जी कर इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है कि खुद ब खुद समय आएगा, समय इसको नष्ट नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे संसार में देखे गए ना, समय पर छोड़ देते हैं कि अभी हम भक्ति नहीं कर रहे, समय आएगा तो भगवान की भक्ति करेंगे और समय आएगा तो मंदिर, कभी किसी को हम बोलते भी है ना कि आप क्यों नहीं मंदिर आते हो, बोलते टाइम आएगा तो खुद ही आएंगे, समय कभी भी नहीं आएगा। क्या ये जो काल है यहाँ ये गजेंद्र हमें बता रहे हैं, इच्छा भी काले ने विप्लवा, कि काल अज्ञान को कभी भी नष्ट नहीं करता। जैसे अगर कहीं पर लाइट हो और लाइट का फ्यूज जो है वो उसका कनेक्शन खत्म कर दिया गया हो और वहां पर बैठ के सारे लोग वेट कर रहे हो कि समय आएगा तो खुद ब खुद उजाला हो जाएगा, ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा, जब तक कि हम उस लाइट का कनेक्शन वापस से जोड़ नहीं देते। उसी प्रकार अविद्या क्या है, भगवान के साथ संबंध टूट गया है, खुद ब खुद थोड़े न जुड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा और हमारे प्रयासों को देख जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तब कहीं जाकर यह संबंध दोबारा से जुड़ेगा। अगर केवल समय के साथ ज्ञान प्राप्त हो जाता, ये अज्ञान का आवरण समाप्त हो जाता, तो जितने भी बड़े बड़े बूढ़े लोग हैं ना वो सब बड़े बड़े ज्ञानी होते, महात्मा होते, क्योंकि उन्होंने तो बहुत समय गुजारा। अब जैसे ऐसा नहीं होता, जिन्होंने शुरू से भक्ति की नहीं है, भगवान के साथ संबंध जोड़ा नहीं है, वो तो और भी अज्ञान में और भी ज्यादा बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए गजेंद्र कह रहे, नहीं मैं समय का वेट नहीं करना चाहता, मुझे पता है समय इस अज्ञान को, इस अविद्या को विनष्ट नहीं करना कर सकता, मुझे भगवान की कृपा चाहिए। तो बोला, आप फिर क्या चाहते हो? तब कहते हैं, तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम, तस्यात्मलोका, कि अब आत्मलोक का आवरण, आत्मलोक आवरण मतलब मेरे जो आत्म साक्षात्कार का ये आवरण है, ये जो अज्ञान है, मैं देहात्म बुद्धि में हूँ, अपने आप को यह जीव, यह देह समझता हूँ, इस आवरण से मोक्ष होना चाहता हूँ, मोक्ष इस आवरण से, इस अज्ञान से मुक्त होना चाहता हूँ। मतलब जो मेरा नित्य स्वरूप है, आत्मलोक का मतलब जो वास्तविक मेरा नित्य स्वरूप है, उसके ऊपर जो अज्ञान का आवरण है, तस आत्मलोक का आवरण मोक्षम, कि उस अज्ञान का आवरण, उस आवरण को हटाकर अज्ञान को नष्ट कर दिया जाए और मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप, मेरा वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो, मैं ये चाहता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर बताते हैं इस लाइन का कि तस आत्मलोक का आवरणस्य मोक्षम, यानी कि आपके आत्मलोक यानी जो भगवान का लोक है, उसको उस लोक में जाने के लिए जो अयोग्यता है, मैं चाहता हूँ उस अयोग्यता से को नष्ट करके आप मुझे इस योग्य बना दो कि मैं आपके लोक में आ सकूं। मैं इस भौतिक जगत में आप अधिक नहीं जीना चाहता। तो यदि हम कंपेयर करें कि ये जो गजेंद्र जो प्रार्थना कर रहा है, और यहाँ जीव जो मनुष्य जिनको कहा जाता है कि इनके पास ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा ज्ञान है, वो क्या प्रार्थना करते हैं, आज का जीव, आज का जो मनुष्य होगा या कोई भी जीव होगा, जिस कंडीशन में है, वो खाली क्या चाहता है कि इस कंडीशन में मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, पर वो मरना नहीं चाहते, वो अपनी देह का त्याग करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं अधिक से अधिक जीऊं इसी शरीर में, है ना, इसी शरीर में वो जीना चाहते हैं। बस अगर कोई गरीब है तो अमीर होना चाहता है, जिसकी संतान नहीं तो उसकी संतान चाहिए होती है, किसी की नौकरी नहीं तो अच्छी नौकरी चाहिए होती है, किसी के पास गाड़ी नहीं तो गाड़ी चाहिए होता है, किसी के शरीर में यदि कोई रोग है तो वो उस रोग से मुक्ति चाहता है, परंतु चाहता यही है कि मैं इसी स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा जीऊं। और यदि हम गजेंद्र के साथ अपने शरीर को कंपेयर करें तो कितना विशाल शरीर था और कितना वैभव था। हमने पढ़ा था केवल उसके गंध मात्र से समस्त बड़े बड़े पशु डर कर भाग जाते थे, त्रिकूट पर्वत की गुफाएं तो हिलने लगती थी, केवल उसके चलने मात्र से कितना सारा ऐश्वर्य था उसका, हजारों अतनियां थी, हजारों उसके साथी थे, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि नहीं, अब इस शरीर में चाहे इस कष्ट से मुझे मुक्ति भी मिल जाए तो भी एब योनिया इस आर्थिक योनि में मुझे नहीं जीना है, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ। 1000 वर्ष तक लड़ाई करी थी इसने, 1000 वर्ष तक राह के साथ, और वो भी प्रदेश में, मतलब पानी के अंदर, जो कि उसका अपना स्थान नहीं है, हाथी तो ड्राई जगह का मतलब पशु है, और ऐसे स्थान में 1000 साल तक वो लड़ता रहा और जीवित रहा। कितने अचंभव की बात है, आज का मनुष्य अगर उसको पूरी कंप्लीट फैसिलिटी दी जाए, घर में भी रहे, तो भी वो 100 साल नहीं जी सकता, फिर भी वो चाहता है कि इसी शरीर में मैं अधिक से अधिक जीऊं, अपने देह से और देह के संबंधियों से इतना मोह है कि वो इस मोह से छूटकर अपने वास्तविक नित्य स्वरूप में जाना नहीं चाहता। परंतु गजेंद्र भगवान से कहते हैं, नहीं, अब मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए, तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम, मेरा जो नित्य स्वरूप है उसके ऊपर जो अज्ञान है, उसका आवरण को हटाकर, अज्ञान को नष्ट करके मैं अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ। अनुवाद देखिए, घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ, जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ, या आवरण काल के प्रभाव से भी नष्ट नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य ශ්‍රීල ප්‍රූපාද ද්වාරශීල ප්‍රූපාදකි ශ්‍රීල ප්‍රූපාද ජී කහතේ හෑ ඉස් භෞතික జగත් මේ ප්‍රත්‍යෙක් ජීව අඥාන කේ අන්ධකාර සේ ආච්ඡාදිත හෑ ඉස්ලිය වේදෝන් කා ආදේශ හෑ කි මනුෂ්‍ය කෝ ගුරු කේ මාධ්‍යම සේ ભગવાન તક પહોંચના ચાહીએ જિનકા વર્ણન તથા સ્તુતિ ગૌતમ્ય તંત્ર મેં ઇસ પ્રકાર કી ગઈ હૈ ઓમ જ્ઞાન તિમરંધસ્ય જ્ઞાનંજના શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ અર્થાત મેં અપને ગુરુ કો સાદર નમસ્કાર કરતા હું જિન્હોને અજ્ઞાન કે દીપક સે મેરી ઉન આંખો કો ખોલ દિયા જો અજ્ઞાન કે અંધકાર સે સોરી મેં અપને ગુરુ કો સાદર નમસ્કાર કરતા હું જિન્હોને જ્ઞાન કે દીપક સે મેરી ઉન આંખો કો ખોલ દિયા જો અજ્ઞાન કે અંધકાર સે અંધી હો ચુકી થી ભલે મનુષ્ય ઇસ જગત મેં જીવન સંઘર્ષ ક્યું ન કરે કિંતુ ઉસકે લિયે સદૈવ જીવિત રહે પાના અસંભવ હૈ ફિર ભી મનુષ્ય કો સમજના ચાહીએ કે યહ જીવન સંઘર્ષ અજ્ઞાન કે કારણ હૈ ક્યોંકિ પ્રત્યેક જીવ પરમેશ્વર કા નિત્ય અંશ હૈ કિસી કો હાથી યા ભારતીય યા અમેરિકી પુરુષ કે રૂપ મે જીવિત રહેને કી કોઈ આવશ્યકતા નહીં હૈ મનુષ્ય કો જન્મ મૃત્યુ કે ચક્કર સે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરને કી એકમાત્ર કામના કરની ચાહીએ અજ્ઞાન કે કારણ પ્રકૃતિ દ્વારા પ્રદત્ત પ્રત્યેક જીવન કો હમ સુખી તથા આનંદદાયક માનતે હૈ કિંતુ ઇસ ભૌતિક જગત કે પતિત જીવન મે બ્રહ્મા સે લેકર એક ક્ષુદ્ર ચિંટી તક કોઈ ભી વાસ્તવ મે સુખી નહીં હૈ હમ સુખ પૂર્વક રહેને કે લિયે અનેક યોજનાએ બનાતે હૈ કિંતુ ઇસ ભૌતિક જગત મે કોઈ સુખી નહીં હો સકતા ભલે હી હમ ઇસ જીવન મે યા ઉસ જીવન મે સ્થાયી આવાસ બનાને કા કિતના હી પ્રયત્ન ક્યું ન કરે કિતના સુંદર શ્રી પ્રભુપાદ જી બતા રહે હૈ કે જીવ કિતના બેવકૂફ હૈ વો ચાહતા હૈ કે ઇસ ભૌતિક અવસ્થા મે ચાહે વો કિસી ભી યોની મે હો અધિક સે અધિક સ્વસ્થ और सुविधाजनक स्थिति प्राप्त करके आनंद प्राप्त करना चाहता है, परंतु जीव चाहे किसी भी हाईएस्ट स्टेज में चला जाए, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चोटी तक, कोई भी वास्तव में सुखी हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने वास्तविक स्वरूप में न हो। जीव भगवान का अंश है और तब तक वो आनंद नहीं हो सकता, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करके अपना वास्तविक कार्य भगवान की सेवा स्टार्ट नहीं कर लेता। क्योंकि जब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आता है इस जगत में, वो चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले वो दुखी रहेगा। जिस प्रकार मछली का वास्तविक स्वरूप है जल में रहना, अगर जल से बाहर निकाल दिया जाए उसको और संसार की समस्त सुविधाओं को प्रदान कर दिया जाए, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में उसको रखा जाए, उसको ऐसा रूम दिया जाए जहां पर एसी लगा हुआ हो, एलसीडी हो, उसको बहुत अच्छे अच्छे सुपर स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, वहां पर घुमाया जाए, अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेकर दिए जाए, बहुत सारी ज्वेलरी कपड़े और बहुत धन दौलत दिया जाए, परंतु वो सारी वस्तुएं वो सारी सुविधाएं उसे जीवन प्रदान नहीं कर सकती, उसे आनंद प्रदान नहीं कर सकती, तड़प तड़प के मर जाएगी। उसी प्रकार हम आत्मा है, ये भौतिक वस्तुएं हमें कभी सुख नहीं दे सकती। ये अज्ञान है जो हम सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में सुविधाओं को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, मगर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक जगत में चाहे आप कुछ भी हो, हाथी हो, भारतीय हो, अमेरिकी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, इस संसार में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कार्य करना है उस वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की एकमात्र कामना करनी चाहिए। तो जीव का सहज स्वरूप क्या है? तस्यात्मलोका वरणस्य मोक्षम। जीव का सहज स्वरूप है भगवान से प्रेम करना, और इस पर आवरण आ गया है जिसके कारण वो जो वास्तविक सहज स्वरूप है यानी भगवान से प्रेम करना वो ढक गया है, आवरण आ गया है। तो आप गजेंद्र क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि उस आवरण से मुक्ति हो जाए, तो सहज कृपा हो भगवान की जिससे वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो जाए, अज्ञान खत्म हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए और मैं वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकूं। ये केवल भगवान की कृपा से होगा। भगवान कहते हैं 10.11 में, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वत् तेषामेवानुकम्पार्थम्। के मैं जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा अनुकंपा करता हूँ, किसके ऊपर? जो सतत मेरे नाम का भजन करते रहते हैं उनके ऊपर जब मैं बहुत ज्यादा अनुकंपा करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से उनके अज्ञान का अंधकार समाप्त कर देता हूँ, उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति याद करा देता हूँ। नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। तो हम सबको भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जो अंतःकरण में अज्ञान आ गया है जिसके कारण हम अपने आप को देह समझ रहे हैं, उस अज्ञान के आवरण को नष्ट करके हमें हमारी वास्तविक स्थिति, हमारा नित्य स्वरूप प्रदान करें, ताकि भौतिक जगत के इस प्रेम से भी मुक्त होकर हम अपने वास्तविक प्रीतम भगवान से प्रेम कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। आज कला साथ नहीं दे रहा है इसलिए शुरू से नहीं पढ़ा सकती हूं। आप स्वयं से प्रयत्न कीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण।